आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की हर घर जल योजना की समीक्षा। जल जीवन मिशन के तहत परियोजना के कार्यों के थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को घोषित किया नया जिला। श्रद्धालुओं को 15 दिसंबर से मिलेगी ऐप के जरिए ई रिक्शा बुकिंग की सुविधा। किसानों के दिल्ली कूच से ग्रेटर नोएडा में दिन भर रहा भारी जाम। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण ने मांगा एक हफ्ते का समय और अगले वर्ष 18 मई को होगी जेईई एडवांस संयुक्त प्रवेश परीक्षा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हर घर जल योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने की परियोजना के कार्यों के थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कहा कि हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर सभी काम समय से पूरा कराएं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जलापूर्ति के कार्यों के चलते खराब हुई सड़कों की मरम्मत का काम समय से पूरा कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से आवश्यक मार्गदर्शन लिया जाए, जिसके आधार पर विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों के बारे में जानकारी ली। बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री रामकेश निषाद मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। ये अस्थायी जिला कुंभ मेले के बेहतर प्रबंधन और प्रशासन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। 4 महीने के लिए बनाया गया इस जिले में सामान्य जिले की तरह ही काम होगा। इसके लिए डीएम, एसएसपी सहित सभी विभागों के पद सृजित किए गए हैं। महाकुंभ जिले में 4 तहसीलों सदर, सोराव, फूलपुर और करछना के 67 गांवों को शामिल किया गया है। वहीं महाकुंभ के लिए प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई रिक्शा और ई ऑटो बुकिंग की सुविधा भी शुरू की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
ओला और उबर की तर्ज पर अब महाकुंभ में ऐप के माध्यम से ई रिक्शा और ऑटो बुक किए जा सकेंगे। इन्हीं व्हीकल्स के ड्राइवर पूरी तरह प्रशिक्षित होंगे। खास बात यह है कि सभी ड्राइवरों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन श्रद्धालुओं को हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिक्कत है, उनकी सुविधा के लिए सभी ड्राइवरों को गूगल वॉइस असिस्टेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सभी रिक्शा और ऑटो जीपीआरएस सिस्टम से ट्रैक किए जाएंगे। इनका किराया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से निर्धारित किया गया है। महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पिंक टैक्सी की भी सुविधा दी जाएगी, जिसमें महिलाएं ही चालक होंगी। 15 दिसंबर से श्रद्धालु और पर्यटक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार के इस कदम से ग्रीन महाकुंभ की अवधारणा को भी समर्थन मिलेगा। शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भी अयोध्या, वाराणसी और आगरा की तर्ज पर पर्यटक पुलिस के रूप में पूर्व सैनिकों की तैनाती होगी। उपनिदेशक पर्यटन रविन्द्र कुमार ने बताया कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पर्यटन पुलिस की तैनाती महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर, माथा कुंवर बुद्ध मंदिर और रामाभार स्तूप सहित कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी होगी। पर्यटक पुलिस के रूप में तैनात पूर्व सैनिक पर्यटकों को गाइड और सुरक्षा प्रदान करने के साथ अन्य आवश्यक सहयोग भी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे समेत अन्य किसान संगठनों की समस्याओं के समाधान के लिए ग्रेटर नोएडा, नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण ने एक हफ्ते का समय मांगा है। किसानों के साथ कई घंटे चली वार्ता में यमुना विकास प्राधिकरण के विशेष कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र भाटिया, नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ महेंद्र प्रसाद और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी मौजूद रहे। बैठक में पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। वार्ता के बाद किसानों ने प्राधिकरण के अधिकारियों की बात मानकर फिलहाल दलित प्रेरणा स्थल पर एक हफ्ते तक इंतजार करने पर सहमति दी है। आज सुबह अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली की तरफ जाने से स्थानीय लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ा। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। यातायात सुगम बनाने के लिए पीएसी रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाई गई। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए कई स्कूलों में कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर चलाई गईं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक दल को आज पुलिस ने संभल जाने से रोक दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस दौरे के लिए आज सुबह ही लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए थे। संभल जाने से रोके जाने पर वो धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और हंगामा किया, पर भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें कार्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया। फिलहाल संभल में 10 दिसम्बर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस अगले वर्ष 18 मई को आयोजित की जाएगी। ये जानकारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के जेईई एडवांस 2025 के आयोजन अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरा प्रश्न पत्र अपराह्न 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। दोनों प्रश्न पत्रों को देना अनिवार्य है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव को लेकर आज लखनऊ के भाजपा मुख्यालय पर संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश चुनाव अधिकारी महेंद्रनाथ पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि यूपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महेंद्रनाथ पांडे को चुनाव अधिकारी बनाया है। उन्होंने कहा कि श्री पांडे के नेतृत्व में भाजपा संगठन की चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है।
पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने संगठन की गठन की प्रक्रिया को भी पूरा करते हैं और हर तीसरे वर्ष हम लोग चुनाव करते हैं अपने संगठन का, अपने कार्यकर्ताओं को काम देते हैं। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने 2.5 करोड़ से अधिक सदस्यता की है। लगभग 2 लाख सक्रिय सदस्य हम लोगों ने बनाए हैं। संगठन महापर्व के रूप में इस संगठन के गठन की प्रक्रिया को आरंभ किया है। उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के मर्मज्ञ महेंद्रनाथ पांडे जी को उत्तर प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया है।
गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब मीटर लगाकर पानी की बर्बादी रोकने के लिए कदम बढ़ाया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने जल विभाग को निर्देश दिए हैं कि पानी की बचत के लिए सभी बल्क वाटर यूजर्स यानी रिहायशी इमारतों में पानी के मीटर लगाए जाएं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग के मैनेजर प्रभाष शंकर ने बताया कि ये विशेष मीटर बैटरी से चलेंगे।
ये स्मार्ट मीटर हैं जो लेटेस्ट फीचर चल रहा है अभी, AI बेस्ड और IoT इनेबल्ड होंगे और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा गवर्न होंगे। इसमें स्मार्ट मीटरिंग में है कि रियल टाइम वाटर सिस्टम को ये डिटेक्ट करेगा और कंट्रोल रूम में ये बताएगा कि किस सोसाइटी को हम कितना पानी दिए, और ये विदाउट पावर चलेगा। इसमें किसी पावर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये सिम ऑपरेटेड रहेगा।
गोरखपुर में चल रही महंत अवैधनाथ अखिल भारतीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन है। इस प्रतियोगिता में देश की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख रुपए और उपविजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा 2 टीमों को 50-50 हजार रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
महंत अवैधनाथ प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता में आज 9 ग्रुप मैच खेले गए जिसमें 12 टीमों ने भाग लिया। कल नॉकआउट मैच खेला जाएगा। कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ 1 दिसंबर को खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया था। इसका समापन 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। गिरीश नारायण चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
लोक निर्माण विभाग ने वाराणसी मंडल के लिए 15 सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है। 268 करोड़ से वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर में ये सड़कें बनाई जाएंगी। इनकी लंबाई 124 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इनमें जौनपुर में 5, चंदौली में 4 और गाजीपुर तथा वाराणसी में 3-3 सड़कें बनाई जाएंगी। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता अभिनेश कुमार ने बताया कि सर्वे करने के बाद इनकी DPR तैयार की जा चुकी है। प्रस्तावित 13 सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और 2 के लिए प्रस्ताव बाद में भेजा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की हर घर जल योजना की समीक्षा। जल जीवन मिशन के तहत परियोजना के कार्यों के थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को घोषित किया नया जिला। श्रद्धालुओं को 15 दिसंबर से मिलेगी ऐप के जरिए ई रिक्शा बुकिंग की सुविधा। किसानों के दिल्ली कूच से ग्रेटर नोएडा में दिन भर रहा भारी जाम। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण ने मांगा एक हफ्ते का समय और अगले वर्ष 18 मई को होगी जेईई एडवांस संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।